آج کا پہلا کلاس ہے، تین گیارہ 1966، گروار کو ریکارڈ چلا ہے، تقدیر جگا کر آئی ہوں میں، ایک نئی دنیا بسا کر آئی ہوں، یہ نئی دنیا اور پرانی دنیا، یہ بچوں کو ابھی خیال میں ہے، کہ نئی دنیا کیا ہوتی ہے اور پرانی دنیا کیا ہوتی ہے، کیونکہ بچے جانتے ہیں کہ پرانی دنیا کا وناش ہونا ہی ہے، اور نئی دنیا جس کو سورگ کہا جاتا ہے، ہیون کہا جاتا ہے، تو وہ ہیون یا سورگ باپ ہی رچتے ہیں، کیونکہ سواتما کو کہا جاتا ہے، سو اور گا مانے گیا، منا آتمک استھتی میں گیا تو سورگ، نئی دنیا، یہ آتمک استھتی میں لے جانا کون سکھاتا ہے؟ جو سدیو سو استھتی میں رہنے والا ہے، اور جو بھی منشی ماتر ہیں ان کی آتما سدیو سو استھتی میں رہنے والی نہیں ہے، دیوان میں رہنے والی ہے، تو جو دیوان میں رہنے والے ہیں وہ سورگ نہیں بنا سکتے، دیوان میں رہنے والے نرک ہی بناویں گے، جو بھی دیہداری دھرم گرو ہیں، دھرم پتائیں ہیں، ابراہیم، بدھ، کرائسٹ، گرو نانک، کوئی بھی بڑے تے بڑے کہے جانے والے ہوں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، 2500 ورش کی ہسٹری کہتی ہے کہ ان دیہداری دھرم گروؤں نے اس دنیا کو نرک بنایا ہے، پرانی دنیا بنایا ہے، اسے ہیون نہیں کہیں گے، ون جیتنے کو کہا جاتا ہے، ہیون ارتھات دیوان کو جیتا ہوا ہے، پانچ وکاروں کو جیتا ہوا ہے، تو وہ ہیون کہو یا سورگ کہو، بے حد کا آتماؤں کا باپ ہی رچتے ہیں، اور بچے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آتماؤں کا بے حد کا باپ جس کا نام شیو ہے، کام کے آدھار پر ہی نام پڑتے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں آ کر کے جو بھی کام کیے ہیں، और काम तो इंद्रियों से ही किए जाते हैं, शरीर से ही काम किया जाता है। तो वो आत्माओं के बेहद के बाप ने इस दुनिया में आकर जो भी काम किए हैं सारे ही कल्याणकारी काम है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, उनकी जयंती भी जरूर मनाते हैं। जयंती साकार की मनाई जाती है, जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? तो निराकार आत्मा जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो भी इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के शरीर धारण करता है और उस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी करता है, जो भी बोलता है, सब कुछ कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती माना ही जय जयकार। ये सृष्टि का अंतिम छोर होता है, जब अंत में बाप प्रत्यक्ष होकर के सारी दुनिया में जय जयकार कराई देते हैं। और आते भी कब हैं? जब इस सृष्टि पर घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो जाती है। सारी दुनिया तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में होती है, सभी धर्म वाले, सभी देश वाले घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में होते हैं, परंतु बाप जिन ब्राह्मणों के बीच में आकर के ज्ञान देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, वो ब्राह्मण भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि में आत्माओं का वो बेहद का बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जिसकी यादगार आज भी जयंती मनाते हैं। अभी दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते, कि शिव जयंती, शिव का जन्म। अभी शिव का जन्म ये तो मनुष्यों का जन्म मनाते हैं, मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं तो उनका जन्म दिवस मनाते हैं। गर्भ में उनको जाना पड़ता है, जिनका पूर्व जन्मों का कोई सुख दुख का बंधन होता है, शिव का तो कोई इस प्रकार का बंधन ही नहीं होता, वो तो सदैव निराकारी है। इस दुनिया में देह में प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है, इसलिए अकर्ता गाया जाता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता। वो एक ही सुप्रीम सोल है जिसका शरीर में पार्ट बजाते हुए भी कोई कर्म बंधन नहीं बनता। तो गर्भ से जे या गर्भ महल से जन्म भी नहीं होता, न सुख का बंधन न दुख का बंधन। तो शिव का जन्म तो कभी होता ही नहीं है ऐसे कहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव जयंती का क्या होता है। उन्होंने कैसे जन्म लिया, कृष्ण का तो जन्म गाया जाता है कि बरोबर उन्होंने जन्म लिया, उनकी तिथि तारीख सब कुछ शास्त्रों में दिखाते हैं। फिर दुखाते हैं कि कृष्ण का बाप टोकरी में डाल करके कंस के डर से यमुना पार करके ले गया। अब ये जो शास्त्रों में बातें दिखाई हैं, जिन शास्त्रों की सार की बातों को बाबा उठा करके बोलते हैं तो उन बातों में तो जरूर कोई सार है। इसमें क्या सार है? यही सार की बात है कि कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, उनके पिता का नाम वसुदेव है। वसु ज्ञान धन संपत्ति को कहा जाता है। वास्तव में वसुदेव कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण का बाप ही वसुदेव है, जो सारी दुनिया को ज्ञान धन देने के निमित्त बनता है। क्योंकि वही है जो डायरेक्ट नरसिंहनारायण बनता है और निराकार बाप से तीनों काल का ज्ञान अर्जन करता है। तो दिखाया है कि कृष्ण का बाप बुद्ध रूपी टोकरी में डाल करके अर्थात जो नरसिंह नारायण पद पाने वाली आत्मा है, जिसे राम बाप भी कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है, उस बच्चा बुद्धि आत्मा को बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके टोकरी में क्यों डालता है? क्योंकि कंस का डर रहता है, कंस के डर से वो यमुना नदी को पार करके ले गया। यमुना नदी काली नदी है, उसका ज्ञान जली ही काला हो जाता है। क्योंकि उस नदी में कालिया नाग वास करता है। ये कालिया नाग कोई और दूसरा तो नहीं है, ये काम क्रोध लो मोह अहंकार कोई कालिया नाग का है। तो देखो कृष्ण के लिए ये सब बातें लिखी हुई है, लेकिन शिव के लिए तो जयंती के लिए कोई वर्णन नहीं है शास्त्रों में बिल्कुल ही। नहीं तो गाया जाता है कहाँ न कहाँ, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। फिर शंकर द्वारा विनाश, पुरानी दुनिया का पुराने संगठन का, फिर विष्णु द्वारा नए संगठन की पालना होती है। तो देखो तीन देवताओं को दिखाते हैं, देवताएं तो देवताएं ही हैं, भगवान तो नहीं है। भगवान के लिए कहा जाता है तीन देवताओं के द्वारा स्थापना पालना और विनाश का कर्तव्य कराती है। तो ऊंचा तो भगवान ही ठहराना, जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो ब्रह्मा का भी बाप है, शंकर का भी बाप है। जो शंकर है सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, आदि पिता है। देवताओं में आदि है, गाते भी हैं तुम आदि देव है पुरुष है पुराण। तो देखो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, उसका भी वो परमपिता परमात्मा शिव बाप है। वो परमपिता है, उसका कोई बाप नहीं। धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे अल्लाह अब्बल दीन कहा जाता है, दीन माने धर्म, अब्बल नंबर का धर्म, जिसने स्थापन किया, वो इतना पुराना धर्म है देवी देवता धर्म कि उसके बारे में सबको विस्मृति हो जाती है, सिर्फ नाम मात्र रहता है। स्वर्ग बैकुंठ पैराडाइज जन्नत तो क्या कोई जन्नत की स्थापना स्वर्ग की बैकुंठ की स्थापना ऊपर बैठ के की होगी क्या? और अगर कोई सूक्ष्म वतन में ऊपर ब्रह्मा को समझे तो क्या सूक्ष्म वतन से किसी को प्रेरणा करते हैं? ये भी तो नहीं हो सकता। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि याद तो करते ही हैं पतित पावन को, जो इस दुनिया के सभी कलयुगी मनुष्यों को पतित से पावन बनाने वाला है। उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म की यादगार भी मनाते हैं शिव जयंती। बाकी शिव आकर के खुद जब भी कुछ समझावे तभी ही कोई मनुष्य की बुद्धि में बैठेगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई नहीं जानता, क्योंकि सब मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है, सब धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी बाप, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसे सब याद रहता है। सृष्टि का आदि, सृष्टि का मध्य अंत सब पता रहता है। इतनी बड़ी सृष्टि में वो एक ही आत्मा है तुरिया, जो त्रिकालदर्शी है। तो जब तक वो आकर के न समझावे तब तक किसी की बुद्धि में कुछ नहीं बैठ सकता। कोई की बुद्धि में तब तक बैठ ही नहीं सकता। और ये ड्रामा में नूद होने के कारण बाप को ही समझाने के लिए आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? जब ये सृष्टि चार अवस्थाओं से पसार हो जाती है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो ये सृष्टि की भी जब तामसी स्टेज हो जाती है, जर्जरी भूत अवस्था हो जाती है, दुखदायी सृष्टि हो जाती है, तब कलयुग के अंत में और नई सृष्टि के आदि में दोनों के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। तो अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है और सबको समझाते भी रहते हो, परंतु अभी तक प्रदर्शनी में ऐसा नहीं समझाते हैं, न लिखते हैं कि हाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को फिर से क्षत्रिय शिष्टाचारी स्वर्ग बनाए रहे। ये ओपिनियन कोई भी लिख करके नहीं देता। फिर से का मतलब पहले भी बनाया था और अभी फिर से बनाए रहे। ये बात कोई भी नहीं अच्छी तरह से बुद्धि में समझते हैं, समझाने वाले भी नहीं समझते हैं, एक भी नहीं समझते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा संगठन तैयार हुआ था, नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन स्थापन हुआ था। कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी, तब वो ब्राह्मणों का संगठन सागर के किनारे बंगले में 300-400 आत्माओं का संगठन बड़े आराम से रह पड़ा था। सिंपल था। पुरानी नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन का सैंपल था। अभी फिर से बाप आया हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया के बीच ही आया हुआ है। ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया है जरा जीर्ण सिंधियों की जो पुरानी दुनिया है उस दुनिया के बीच में आकर के नए ब्राह्मण संगठन की स्थापना कर रहा है। इसलिए बाप कहते हैं कि यहाँ इतने आते हैं समझने के लिए, भले लिखकर भी देते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन लिखकर के देते हैं, परंतु कोई की भी बुद्धि में यथार्थ रीत से बैठे कि ये बाबा आया हुआ है और फिर बाप आकर के वो ही स्वर्ग का संगठन का वर्षा दे रहे। स्वर्ग के राजभाग का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठती है। कुछ बुद्धि में बैठता है, फिर कहते हैं कि अच्छा आएंगे, टाइम निकाल करके समझेंगे, परंतु फिर भी वो आते नहीं हैं। आते बहुत थोड़े हैं। देखो पहली बार समझने के लिए कितने हजारों आते हैं, 8, 10, 12, 15, 20, 25, चल फिर भी 20-25 सौ आते आते उनमें से घटते घटते थोड़े रह जाते, घटते घटते पीछे जाकर कोई 1, 2, 4, 5 निकलते हैं। तो देखो कितनी बुद्धि तमो प्रधान बनी हुई पड़ी है, जो इतनी सहज बात, और ये सहज बात कल्प कल्प आकर के सुनते हैं कि मनमना भव मद्यादि भव, क्या मतलब? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा, ये कौन कहते हैं? है शिव बाप कहते हैं, है हाँ हाँ बाबा ही कहते हैं, साकार के बगैर कैसे कहेंगे? मन मना भव ये कौन सी आत्मा कहती है? शिव। हाँ बाबा तो इसलिए कि साकार शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए बाबा कहा जाता है। सभी संबंध तब जुड़ते हैं जब साकार शरीर में प्रवेश करे। साकार शरीर में अगर प्रवेश न करे तो वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध ही नहीं। आत्माएं आत्माएं सब भाई भाई, और वो है आत्माओं का बाप। परंतु जब शरीर में आते हैं तो बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा संबंध बनता है शिव बाबा। तो ये कौन कहते हैं मनमना भव है? शिव बाबा कहते हैं है? शिव बाबा को अपना मन है? है? शिव की आत्मा को अपना मन है? मन का काम है सोच विचार करना, संकल्प विकल्प करना। तो शिव की आत्मा को संकल्प विकल्प करने की दरकार है, मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। उसको मन होता है? वो तो अमन है, अमन चैन से रहने वाली आत्मा है। तो फिर कौन सी आत्मा कहती है? ब्रह्मा की आत्मा कहती है। जैसे आत्मा में तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, तो शिव की तो आत्मा है, शिव की आत्मा में भी ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा रूपी मन, शंकर रूपी तीसरा नेत्र बुद्धि और विष्णु संस्कार शक्ति, संस्कार परिवर्तन शक्ति विष्णु को कहा जाता है। वो जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जैसे आत्मा में तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा के रूप में हर आत्मा अपने अंदर दिव्य गुणों का स्थापना का कार्य करती है, शंकर के रूप में जो दुष्ट गुण हैं, अवगुण हैं, उनका विनाश का कार्य करती है। और अवगुणों का जब विनाश हो जाता है तो जो श्रेष्ठ गुण बचते हैं उनकी पालना का काम विष्णु के रूप में करती है। ये परिवर्तन शक्ति है, तीनों का काम अपनी अपनी जगह जरूरी है। ऐसे ही मन को ब्रह्मा कहें या न कहें, है ब्रह्मा कहें, तो ब्रह्मा थोड़े ही खुद कहेगा मन मना भव, मेरे मन में समा जा। है शिव को मन है तो कौन कहते हैं? है शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ के द्वारा कहते हैं कि मेरा दिल कहो मेरा मन कहो जिसके ऊपर धरा हुआ है, जिसके लिए सारी पढ़ाई है, किसके लिए? सृष्टि के पहले पत्ते के लिए ये सारी पढ़ाई किसके लिए है? खास कृष्ण वाली आत्मा के लिए। तो वो मेरा दिल है, मेरा मन है, मेरा दिल उसके ऊपर आ गया। दुनिया में हर एक बाप, चाहे 10-12 बच्चे क्यों न हो, हर एक बाप का दिल कौन से बच्चे के ऊपर होता है? पहले बच्चे के ऊपर होता है। हिस्ट्री में भी देख लो, राजाओं ने अपनी राजाई किस बच्चे को दी? पहले बच्चे को दी। तो पहले बच्चे के ऊपर दिल होता है बाप का। तो मन मना भव का अर्थ क्या हुआ? ये मन मना भव किसने कहा है, शिव की आत्मा ने साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के बोला कि मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, मेरा जो लगते जिगर है, कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, जो सत्युग में पहला पत्ता बनेगा सत्य रूपी वृक्ष का, उसके मन में समा जा, अर्थात ब्रह्मा के मन में क्या है, खास बात क्या है? कौन सा खास गुण है जो ब्रह्मा ने ही धारण किया? उस सहनशीलता रूपी गुण में समा जा। क्या? दे अहंकार को छोड़ दे। वैसे भी बाप कहते हैं, इस दुनिया में सहज सहज अगर अहंकार नहीं छोड़ा तो याद रखो मैं मच्छरों से दस ले जाऊंगा। कैसे? जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, आकर के बैठा और पट से मार दिया, सोचा ही नहीं कुछ। मच्छर मारने के लिए कोई सोचता है कि मारूं न मारूं? ऐसे देह अभिमान को खलास करके ले जाऊंगा। तो देह अभिमान कैसे खलास होगा? कौन सा गुण, कौन सी शक्ति धारण करें? हैं? सहन शक्ति। ये सहन शक्ति धारण करेंगे तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर के लिए हम अपनी दुनिया बनाएंगे। हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया होती है। हर एक आत्मा 84 जन्मों में नियत आत्माएं हैं जिनके संसर्ग संपर्क संबंध में आती है, तो वो उस दुनिया हो में रहने वाली आत्मा हुई ना। 500 करोड़ के संसर्ग संपर्क में तो एक ही आत्मा आती है जिसे मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है अथवा ब्रह्मा कहा जाता है, जिस ब्रह्मा की गोद में सभी धर्म की आत्माएं पलती हैं, खेलती हैं। तो बोला मन मना भव, मेरे मन रूपी ब्रह्मा में समा जा। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी ले, वो चुल्लू पानी भी खा रहा और उसको सागर में डाल दिया तो क्या हुआ? खा रही रहा, लेकिन वो चुल्लू पानी सागर में मिलकर के सागर बन गया या नहीं बन गया? सागर ही बन गया। तो ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा को आखरीन वो सहन शक्ति का गुण धारण करना ही पड़ेगा। मन मना भव होना ही पड़ेगा। तो जब मन मना भव होते हैं तब पक्के पक्के मद्याजी भव होते हैं। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, मेरे लिए यजन करने वाला, यज्ञ अर्थात सेवा करने वाला। जब तक मन मना भव नहीं हुए हैं पूरे तब तक मेरे लिए सेवा नहीं कर सकेंगे। किसके लिए करेंगे? हैं? अपनी देह के लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए करेंगे। सेवा किसके लिए करेंगे? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करेंगे या भगवान बाप के कार्य के लिए करेंगे? है? देह का मोह है, देह में ममत्व है, तो अपने लिए करेंगे। विश्व कल्याण के लिए करें 100%, ये तभी हो सकता है जब देह भान को बिल्कुल खत्म कर दें। तो अक्षरी ये दोनों हैं मुख्य, कौन से? मध्याजी बाबा मुझे याद करो तो पाप तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्या? मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप विनाश हो जाएगा। कब विनाश हो जाएगा? है जब मन मेरे में लगा दो। मन को मेरे मन में तिरोहित कर दो, तुम्हारा मन अपने लिए कुछ भी न रहे। इच्छा मात्रम अविद्या। तो गारंटी करते हैं ना, ये जो भी तुम्हारे सिर पर पाप हैं, उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ, सारे ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों से बंधन का छुटकारा मिल सकता है। कौन सा बंधन? देह का बंधन। ये देह के बंधन तब तक चलते रहते हैं जब तक ईश्वरीय सेवा में हम अपना तन मन धन संपूर्ण स्वाहा नहीं कर पाते। अगर तन मन धन समय संपर्क अपने लिए लगाते रहते हैं तो कुछ न कुछ कर्म बंधन बनता ही रहेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसे पुरानी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? यज्ञ सेवा के अतिरिक्त और जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं से कर्म बंधन बंधेगा या खत्म होगा? हैं?
बंधेगा।
अभी देखो गीता में है भी तो बहुत अच्छी तरह से, और तुम बच्चे भी समझाते हो अच्छी तरह से कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जो भी विकर्म हैं, तुम्हारे जो भी विपरीत कर्म हैं विकर्म, और जो भी हुए हैं जिनसे तुम तमो प्रधान बने हो, विकर्मों के कारण ही तमो प्रधान बने हो, सो सतो प्रधान बन जावे। और फिर ये तो जरूर है जबकि बाप बैठकर पढ़ाते हैं और कहते हैं फिर कोई भी विकर्म नहीं करो। पिछले पाप कर्म भस्म होते जाएं और नए नए विकर्म करते जाएं तो क्या होगा? है और ही पापात्मा बनेंगे या पुण्यात्मा बनेंगे? क्योंकि ज्ञान में आने के बाद फिर कोई अगर पाप करता है तो उसके ऊपर 100 गुना बोझ चढ़ता है। विकर्म कराने वाला है रावण, क्या कहा? विपरीत कर्म कौन कराता है? वी माने विपरीत। किसके विपरीत? ईश्वर ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के बरखिलाफ कर्म कराने वाला कौन है? रावण है। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को, वो विपरीत कर्म करा के हमको नीचे गिराता है। इस पर उनकी मत पर न चलो, कोई भी विकर्म न करो, कोई को भी दुख न दो। अभी तुम यही सर्विस करते रहो। क्या क्या सर्विस करते रहो? किसी को दुख नहीं देना। किसी ने तुमको गाली दी, तुम्हारी ग्लानिंग की, तुम्हारे घर परिवार वालों की ग्लानिंग की, बाबा की ग्लानिंग की तुम्हारे सामने, और तुमने सहन नहीं किया। सहन नहीं करेंगे तो वाचा से युद्ध कर देंगे। करेंगे या नहीं? तो पाप कर्म बनेगा या पुण्य कर्म बनेगा? क्योंकि सहन नहीं किया तो क्या करना है? मन मना भव, जो मेरे मन ब्रह्मा ने किया वो ही तुमको करना है। ऐसी सर्विस करते रहो। ब्रह्मा ने अपने जीवन में क्या खास कार्य किया? कभी किसी को दुख नहीं दिया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा, दुर्वाक्य कहा, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसी सर्विस करते रहो। जो बाबा आए हैं सर्विस करने, पतित को पावन बनाने, देखो बाबा कहते हैं ना कि पतित को पावन बनाने, बस यही तुम्हारा धंधा है। क्या तुम्हारा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना, यही तुम्हारा काम है। तो रात दिन ये चिंतन करो कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बतावे है? क्या करना है? पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। क्या रास्ता है? हैं? क्या रास्ता है? अरे हाँ, ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा काम, ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप का परिचय देना कि वो ही सारी दुनिया को ऊंच बनाने वाला है, नीच ते ऊंचे बना देता है। उसका जितना भी हम संग करेंगे बुद्धियोग से, मन से, वाचा से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से जितना भी संग करेंगे तो याद आवेगा या नहीं आवेगा? जैसे आंख से किसी को देखा जाता है लगाव पूर्वक, तो याद आता है या नहीं आता है? याद आता है। तो देखो रास्ता बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल रास्ता, सिंपल ते सिंपल कि तमो प्रधान बने हो, योग बल से सतो प्रधान बनेगा और सब के लिए एक ही दवाई, और ये अविनाशी सर्जन की दवाई है। اسی کو اصلی دوائی کہا جاتا ہے. اور دنیا میں یہ جو جتنی پیتھی چلی ہے ان سے سدھار ہو رہا ہے اور یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہے؟ اور یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. دنیا کا سدھار تو نہیں ہو رہا ہے. تو ایک ہی دوائی ہے, ایک ہی اویناشی سرجن ہے جس کی دوائی سے ساری سرشتی کا ادھار ہو جاتا ہے. سو بھی یہ کوئی دوائی بوائی بھی نہیں ہے, یہ کوئی منتر بھی نہیں ہے کہ منتر کا جاپ کرتے رہو اونگ رنگ رامائے نمک, رام رام جپتے رہو. اس کو ایسے بھی نہیں کہیں گے کہ وشیکرن منتر ہے. جو نام رکھا ہے وشیکرن منتر نہیں, یہ تو آتما ہے, جیوتی بندو سروپ ہے. اس سروپ میں استھر ہو جاؤ. اس سروپ کو یاد کرو. دیکھو کیسے کلیئر سمجھاتے ہیں. اور کلب پہلے بھی تو کلیئر کر کے سمجھایا تھا, شاستروں میں تو کچھ بھی کلیئر نہیں ہو سکتا ہے. شاستروں سے یہ گیان کلیئر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ابھی تم بچوں کو سمجھاتے ہیں اور جانتے ہو کہ اپن کو آتما سمجھ کر کے بیٹھتے ہو یہاں, سمجھتے ہو کہ بابا ہم کو سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں بچوں یہ تم جانتے ہو کہ یہ ابھی تمو پردھان دنیا ہے, ابھی. اور کبھی ایسا بھی ٹائم تھا کہ یہ دنیا ستو پردھان تھی. ستو پردھان میں سکھ ہی سکھ تھا اور ابھی تمو پردھان دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. یہ تمو پردھان پرانی دنیا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز پرانی ہوتی ہے تو دکھدائی ہو جاتی ہے. گاتے تو بہت اچھی طرح سے ہو, جان بھکتی ویراگ. اب جان پیچھے ہوتی ہے بھکتی, انت میں ہوتا ہے ویراگ. ارتھات جب جان ملتا ہے تو گیان کا پرارب ملتا ہے, سکھ ملتا ہے, دکھوں سے چھٹکارا ملتا ہے. وہ ٹائم بھی پورا ہوتا ہے, پھر بھکتی چالو ہوتی ہے. بھکتی کرتے کرتے پھر گیان ملنے سے ویراگ آ جاتا ہے اس دنیا سے. اچھا ماترم ودیا پورا ویراگ. تو ویراگ کس دنیا سے ہے؟ پرانی دنیا سے, دکھدائی دنیا سے. اس چی چی پرانی دنیا کا ویراگ, اور پھر اس کے لیے جو پرانی دنیا ہے اس میں پاپ آتما بن گئے ہو, پتت بن گئے ہو. سو تو اپن کو آپ ہی کہتے ہو پتت پاون آؤ, ہے پتتوں کو پاون بنانے والے آؤ, पतित बन गए हो तब तो बुलाते हो। या भले कुछ पतित पावन न भी कहें, तो भी हे लिबरेटर आओ। अब लिबरेट किससे करना है, छुटकारा किससे पाना है? है दुखों से छुटकारा पाना है, बंधन से, इस देह के बंधन से छुटकारा पाना है। किसके दुख से? ये रावण राज्य शैतानी राज्य से छुटकारा पाना है। ये अंग्रेजी में इसको शैतान भी कहते हैं। किसको? रावण राज्य को। यहाँ तो रावण कहते हैं और वो मुसलमान लोग शैतान कहते हैं, तो वो बेचारे चाहते हैं कि शैतान राज्य से हमको मुक्त करके हमको अपने शांति घर में ले चलो। असल घर कहते ही हैं बिल्कुल आकर के, हे माता पिता हमको लिबरेट करके फिर हमारा गाइड बनो, गाइड बनकर हमको साथ में ले चलो। असल में जैसे कि वो कोई बाप आते हैं ना, तो छुड़ा करके वही कोई जेल में पड़ा हुआ है बच्चा, और आकर के वो छुड़ाई करके बहुत प्यार से उसको बाकी पहन करके ले जाते हैं घर। दुनिया में भी ऐसे होता है ना भाई, बच्चा जेल से छूटा तो ये बेहद का बाप है, ये बेहद की दुनिया है। सभी बच्चों को खातरी देते हैं कि बच्चों अभी हम आया हुआ हूं तुमको जेल से छुड़ाने। दिखलाते हैं प्रदर्शनी में उस रावण का पिंजरा, रावण का वो जाली, उसमें से वो चूहे के मिसल फंसे हुए हैं, वो भी दिखलाते हैं वहां, परंतु कोई भी पूरी रीति समझते नहीं है। नहीं तो इतना मीठा बाप आकर समझाते हैं बच्चों, हे बच्चों तुम पुकार रहे हो, ड्रामा पूरा हो रहा है, ये कल्प कल्प ऐसे ही होता है, मैं आकर के तुमको सिंपल रीत से छुड़ाता हूं, क्योंकि तुमने ही बहुत भक्ति की है। बहुत भक्ति में मंदिरों में पैसा घुमाए घुमाए करके बाकी बर्थ नाचे पहनी जाकर बने हो, अभी हम फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी सिर्फ मेरी एक बात अच्छी तरह से मानो। देखो बच्चों को बैठकर जो सुनते हैं सुनाते हैं, बच्चे कानों से सुनते हैं, ये बाबा मुख से कहते हैं और कौन सुनते हैं? आत्मा सुनती है, आत्मा जानती है। अरे भाई आत्मा हमारी तमो प्रधान बन गई है, सतो प्रधान तो नहीं है, क्योंकि ये कोई सतयुग तो नहीं है, अभी कलयुग है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अभी सतो प्रधान बनने का विचार आया है। अच्छा एक बात कि एक तो पवित्र रहो, अब पतित मत बनो। कोई को भी दुख नहीं दियो, और ये मंत्र है क्या? मनमना भव ये युक्ति बताते रहो, फिर चित्र भी हाथ में ले लो, समझाओ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे। किसके द्वारा कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं किसे याद करो? मुझे माने शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को ही याद करेंगे ना, है? और तुम सतयुग का मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग का मालिक बन जाएंगे। सतयुग का मालिक बनना है या विश्व का मालिक बनना है? है? और सतयुग का मालिक कौन बनेगा? है? सतयुग की स्थापना हो रही है और इस कलयुग को आग लग रही है। इतनी सिंपल बात है समझाने की। एटम बम फटेंगे और सारी दुनिया को आग लगेगी। कोई भी हो वे, कोई भी धर्म वाला हो, वो भी समझ जावे ड्रामा को और उनको बताना चाहिए फलाना फलाना धर्म कब कब आता है और फिर सभी अभी संगम युगों पर ही जाएंगे। सभी धर्म वाले जाएंगे या कोई रह जाएगा? अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। माना भगवान बाप का जो घर है, आत्माओं का लोक है, वहां भी सेक्शन बाजी है, है? अपने अपने ग्रुप में जाके ठहरेंगी आत्माएं? नहीं है,
अपने अपने ग्रुप में ठहरेंगी।
हाँ, उन्हें दूसरे के ग्रुप में अच्छा ही नहीं लगेगा, उन्हें अपने धर्म में रहना ही, अपने संगठन में ही रहना अच्छा लगेगा। ये भी जरूरी है कि सब कोई अपने सूक्ष्म वतन में, सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। क्या ये भूत प्रेत आत्माओं का भी सूक्ष्म वतन अपना अपना अलग अलग होता है? क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतन में जा रही है, निवास कर रही है, तो वहां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी उनके साथ होंगी? होंगी? उनका ग्रुप अलग, सब अपने सूक्ष्म वतन में, सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। क्योंकि अभी फिर से रिपीट करना है तो वो भी तो ख्याल होता है ना। फिर से कौन रिपीट करेंगे? है, सभी धर्म वाले रिपीट करेंगे। जो धर्म वाले जिस नंबर पर सच रूपी रंगमंच पर आए हैं उसी नंबर पर रिपीट करेंगे। फिर भी पहले पहले कौन सा धर्म आवेगा? देवी देवता सनातन धर्म, उसको ही कहा जाता है देवी देवता धर्म। ओम शांति।